नेक्स्ट स्टेप लीजिए, बलाओं से ना घबराइए कि वो इनामों अतिया भी हो सकते हैं। यानी ये जो बलाएं हैं, जिसको आप वबाएं कह लें, कुछ और कह लें, किसी भी रंग में कह लें, तो कोई ना कोई चीज़ इसमें आती है और ये सच है। तो बात यह है कि कभी कभी इंसान खामोश रह नहीं पाता। खामोश ना रहा जाए तो कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। मसलन कि आप और मैं जितना ज़्यादा खामोश रहेंगे ना, उतना फ़ायदा होगा। और ये जो शख्स है ना, जिनाथिन स्विफ्ट, उनके कॉल को ज़रा डिटेल से भी सुन लें। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर रहम, डॉक्टर सुकून, डॉक्टर खुशी। खुशी और मुसर्रत के साथ थोड़ा थोड़ा खाना ऐसा कामयाब इलाज है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। मैं इजाफा करते हुए कहता हूँ कि मोटापा एक मुजम्मन मर्ज है। तोंद आदमी की जहानत और मसरत को खा जाती है। यानी पेट बड़ा हो तो लोगों के जहन में उस बंदे के जहीन या स्मार्ट होने का तसव्वुर नहीं आता। और खामोशी दिल और रूह को आराम देती है, खुश रहने से सुरूर मिलता है और ये अच्छी ग़ज़ा है। तो क्या सीखा कि बस कम बोलना। फिर आप देखिए अगला टॉपिक क्या है, बलाओं से ना घबराइए कि वो इनाम और अतिया भी हो सकते हैं। डॉक्टर स्मॉल जॉनसन कहता है कि हर हादसे में मुस्बत पहलू ढूंढो, यानी पॉजिटिविटी ढूंढो। मुस्बत पहलू ढूंढ निकालना साल भर में हजार हजार गनियों से ज्यादा कीमती है। क्या पता चला कि बी पॉजिटिव, हर हादसे, एक्सीडेंट, अनयूजुअल थिंग्स, कोई भी जिंदगी में प्लस माइनस जो होती है, उसमें से पॉजिटिविटी निकाल लीजिए। वरना आप कई दफा आप अल्लाह का नाम लें, आप कोई अच्छा जुमला बोल दें, इससे भी ये बात बेहतरी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ये नहीं देखते कि साल में एक या दो बार इनकी आजमाइश होती है, फिर भी ये तौबा नहीं करते, ना नसीहत हासिल करते हैं। हजरत माविया कहते हैं कि बुर्दबार नहीं होता मगर तजुर्बे वाला। जी, ये जो आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, परफेक्ट ना कहें तो अच्छा है, गुड, तो ये तजुर्बे से होता है। यानी आप इसका भी एक्सपीरियंस किया करें, बार बार अपने आप को एक्सपीरियंस करा के दिखाएं कि मैंने मुश्किल हालात में भी कूल एंड काम रहना है। अफशीन के बारे में अबू तमाम ने कहा, इनके पास अल्लाह की कितनी नेमतें थीं, लगता था वो अजनबियत और कैद की हालत में है। अल्लाह अकबर। सलफ के एक शख्स ने इशरत पसंदों में से एक से कहा, तुम्हारे पास नेमत है, इसे शुक्र के जरिए कैद कर लो। जी, अपनी नेमतों को कैद करें, भला क्यों? क्योंकि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वाला इन कफर तुम इन नाजाबी लशदीद। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो स्टैंप लग जाती है उस चीज़ पे कि अब ये चीज़ ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुमने कुफर किया तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है। और अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई जो पुरअमन और बाइतमान थी, जिसे हर जगह से खूब रोज़ी मिल रही थी। इस बस्ती वालों ने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया तो अल्लाह ताला ने इनके करतूतों के बायस इन्हें भूख और खौफ का मज़ा चखा दिया। ये सूरत नहल की आयत 112 है। अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन करियतिन कानत आमिनतम मुतमईनतन यातीहा रिज़्कुहा मिन कुल्ली मकानिन। यानी मक्का की बस्ती हो या आज के भी किसी ऐसे इलाके के लोग जो वाकई नेमतों में कुछ ज़्यादा ही हद से गुजर गए थे और उनको याद ही नहीं रहा नेमतें देने वाला, तो उनके लिए भी यही बात है। तो फिर क्या सीखा कि बलाओं से नहीं घबराना। वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आसान तक रहो शहीन व हुवा खैरुल लकुम। सवाल पैदा होता है कि अगर हम शुक्र गुजार होते हैं और हर शर को खैर ही बनाते हैं, हमें इससे मिलेगा क्या? तो पहली बात है कि शुक्र गुजारी रज़ा इलाही को पाने का ज़रिया है। शुक्र इबादत है, नेमतों की हिफाजत का ज़रिया है, नेमतों के बढ़ाने का ज़रिया भी है और अल्लाह के अजाब से बचने का ज़रिया भी है। इतने फ़ायदे हों तो कोई शुक्र गुजार होना छोड़ेगा? चले हैं कुछ तो फिर नाशुक्री के नुकसान भी नोट कर लेते हैं। अजाब इलाही का ज़रिया है, नाशुक्री का नतीजा ज़िल्लत और रसवाई है, परेशानी और डिप्रेशन में इजाफे का ज़रिया, और नेमतों के जवाल का ज़रिया, और गुनाह करने की जुरत का बढ़ना है ना शुक्री। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कभी ना शुक्रा ना बनाना, ना अल्लाह का, ना माँ बाप का, ना उस्तादों का, और ना हर उस शख्स का जिसने हमें कोई भी खैर दी। चलिए अपने मान लिए कि ना शुक्री नहीं करनी, शुक्र ही करना है, तो अगला सवाल लिखिए, कैसे शुक्र कैसे अदा करें? शुक्र 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 और शिकवे, शुक्र है किस लोगों से हाल पूछ लेना, क्या कहते हैं, शुक्र है जी जिस हाल में वो रखे, ये कोई शुक्र है, ये तो शिकवे है। और मैं अक्सर जुमला बोलती हूँ कि शुक्र में ढाल लीजिए शिकवों को, ज़िंदगी शक्कर की तरह मीठी हो जाएगी। कड़वी चाय में एक चम्मच चीनी डाल दीजिए तो चाय मीठी होती है, कड़वी ज़िंदगी में एक चम्मच शुक्र का डाल दीजिए तो आपकी ज़िंदगी मीठी हो जाएगी। तो करना कैसे है? दिल और ज़ुबान से। दिल में कॉन्टेंटमेंट हो, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हो, और ज़ुबान से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बी औज़ेन या नशकुरा नेमतक अल्लाती, कोई भी दुआ मांगिए जिसमें शुक्र है। फिर इस तरह मुनीम से मोहब्बत कीजिए, कौन है मुनीम? नेमते देने वाला यानी अल्लाह ताला। और इंसानी मुनीम भी होते हैं, यानी जैसे बच्चों को माँ बाप के ज़रिए चीज़ें मिलती हैं, बीवी को शौहर से मिलती हैं, या माँ बाप को जवान बच्चों से मिलती हैं, तो उस वक्त फिर उस नेमत देने वालों से मोहब्बत कीजिए। फिर इसी तरह मोहसिन के आगे झुक के, अल्लाह का एहसान है, माँ बाप का एहसान है, उस्तादों के एहसान है हम पे, तो उनके आगे अपने आप को झुकाना है। किस तरह से झुकाना है? जिस्मानी तौर पे, रुकू की कैफियत में जाना है? नहीं, अंदर का झुकाव। इसी तरह इतराफ़े नेमत करके, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बच के। और सबसे बड़ा शुक्र पता क्या है? बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड इख्तियार कीजिए, मुस्बत रवैये इख्तियार कीजिए। वो बच्चे किसी को नहीं अच्छे लगते, माँ बाप को कहाँ अच्छे लगेंगे, जो हर वक्त शिकवा ही करते रहें कि आपने तो हमें कभी कुछ दिया नहीं, और जो दिया है वो हमें अच्छा नहीं लगता। अगली टिप लीजिए, इंसान आलम असगर है, यानी इस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक छोटा सा जहान बना के रखा हुआ है, आलम अकबर के यूनिवर्स। तो आलम असगर यानी स्मॉल यूनिवर्स इंसान होते हैं। अगर आप फलां के तर्ज पर नहीं, फलां की तरह नहीं, तो क्या गम, क्या आप एक अलग चीज़ है? क्योंकि अक्सर हम तकाबुल करते हैं ना, फलां वैसा, मैं, मेरी नाक कैसी उसकी ऐसी, वो मेरी दोस्त की आंखें इतनी बड़ी बड़ी मेरी नहीं, उसकी पलकें इतनी लंबी मेरी नहीं, तो भाई नहीं आप उसकी तरह, तो क्या हुआ? डॉक्टर जेम्स कहते हैं, ये मसला कि आप बिल्कुल अलग और मुनफरिद हों, इतना ही कदीम है जितनी तारीख, यानी शुरू से ही लोगों का ये रवैया रहा। इंसानी ज़िंदगी में ये एक आम बात है, मुनफरिद होने के रुझान की कमी नफसियाती पेचीदगियों का सबब है, यानी लोग टू बी डिफरेंट दिखना चाहते हैं, यूनिक और टू बी डिफरेंट। एक हकीम का कॉल है, आप मखलूक में सबसे अलग हैं, आपके मिसल कोई नहीं, ना आप किसी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि खालिके दो जहां ने मखलूकात के बीच फ़र्क और इम्तियाज रखा है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बल्कि तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं, इन नसायकुम लशत्ता। बच्चे की तरबियत नाम की किताब है, यानी एंग्लो पीटर ने 13 किताबें लिखी, हज़ारों मकालात और मजामीन यानी एसेस और कॉलम्स कह लीजिए लिखे। इसका कहना है कि इससे ज़्यादा नामुराद और कोई नहीं जो गैर की तरह बनना चाहे और अपने जिस्म और सोचने के अंदाज़ को बदलना चाहे, तो जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसने आसमान से पानी बरसाया जो इसके मुताबिक नहरें और नाले बनकर बह निकले। हर एक के अपने सिफात, अपनी कुव्वतें और अपनी सलाहियतें हैं, एक आदमी दूसरे में जज नहीं हो सकता। जी यही आयत हमने इस वीकेंड पे की थी ना, हम सब नदी नालों की तरह हैं, असल में बचेगा क्या? वम ममा यनफउ नासु फयमकुस। आपको महदूद और अलग सलाहियतें मिली हैं ताकि आप सबसे अलग कुछ कर सकें। लोग कहते हैं कि अपने आप को पढ़िए, अपनी रफ्तार तरक्की को जान जाइए। खुद एतमादी पर एमर्सन का एक मकाला है, यानी उसका एक आर्टिकल है, इसमें वो कहता है कि एक वक्त आएगा जब इंसान इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि हसद जहालत है, तकलीद खुदकुशी है, और ये कि हर तरह के हालात में अपने आप को वैसा समझा जाए जैसा कि फिल वाकई है। अपने नसीब पर राजी रहिए और ये बात समझ लीजिए कि दुनिया हर तरह की चीज़ों से भरी है, फिर भी आदमी एक दाना भी इस वक्त पाएगा जब अपनी ज़मीन पर काश्त करेगा, इसकी देखभाल करेगा। जो कुव्वतें इसके अंदर पोशीदा हैं वो फितरी हैं, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी दूसरे की कुव्वत नहीं जान सकता जब तक कि तजुर्बा ना हो। अपनी कुव्वत को इंसान खुद ही पहचान सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कह दो कले मलू कहतो कि अमल करो, अल्लाह ताला और इसका रसूल और अहले ईमान तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं। क्या पता चला कि इंसान को करना क्या है? अपने आप को डिस्कवर करना है। ये आजकल जो वीकेंड पे सीरीज चल रही है स्टाफ और एडमिन्स के लिए, डिस्कवर योर सेल्फ, वो भी यही है। क्योंकि जब तक खुद का पहचानते नहीं है, फिर खुद से काम कैसे करवाएंगे? तो आप अल्लाह का मास्टरपीस हैं। इंसानी सलाहियतें महदूद और अलग क्यों हैं? ये एक सवाल उठता है ज़हनों में, और अक्सर बहन भाइयों में और स्पेशली दोस्तों में ये तकाबुल शुरू हो जाता है। बस एक बच्चे का रंग दबता हुआ है तो दूसरे का गोरा है, या दोनों बच्चियों का, तो वो अक्सर सोचती हैं कि मेरी बहन गोरी क्यों है और मैं काली क्यों। और इसी तरह बच्चे, लड़के, हर तरह के लेवल के जो लोग होते हैं, वो अपने बारे में अमूमन इसी ख्याल का शिकार रहते हैं कि हमें अपने सिबलिंग से या जो दूसरे भाई बहन थे उनसे कम क्यों मिला या ज़्यादा क्यों मिला। हो सकता है एक बहन मोटी हो, एक पतली हो, एक गोरी हो, एक काली हो, तो ज़रा सा हम भी इस पे गौर करते हैं क्यों। पहली वजह तो यह है कि ताकि आप सबसे अलग कुछ कर सकेंगे और ख़ुद को वैसा ही समझेंगे जैसे आप हैं। मिसाल दूं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर फ़ारूक की मिसाल बड़ी अच्छी है। देखिए, इस्लाम को अबू बकर की भी ज़रूरत थी और उमर की भी। कुछ काम अल्लाह ने अबू बकर से लेने थे, 2 साल का मुख्तसर सा औकात वक्त उनको दिया और उनसे वो काम ले लिए। वो फितने अबू बकर के ज़रिए दबने थे जो एक लीडर की गैर मौजूदगी में हमेशा ही उठते हैं फितरी तौर पे। वो 2 साल अबू बकर सिद्दीक के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कूल डाउन किया गया। क्योंकि जो नरम मिजाज लोग होते हैं ना, वो कोई बड़े काम ना भी करें ना, तो फितनों को बहरहाल वो दबा लेते हैं। ये पर्सनैलिटीज़ में होता है। इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। खुद को डिस्कवर करने के बाद समझ आता है कि फिर ये मेरे बच्चों के साथ क्या मामले हैं और हस्बैंड के साथ क्या है और सो ऑन। क्योंकि ना हम खुद को जाने होते हैं और ना दूसरे हमें पूरी तरह से जज कर सकते हैं। फिर दूसरी एक चीज़ ये होती है कि आपको दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए बनाया गया कि आपके अंदर खुद एतमादी है। देखिए ना, आप किसी पार्टी में जाए, सब ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं, और जो आप बड़े इत्तेफाक से, अहतमाम से बना कर, पहना समेट कर पहन के गई, 10 लोगों ने वही सूट पहना है, कैसा लगता है? क्या आम तौर पे लोग यही नहीं चाहते कि जो मैं पहनूँ वो कोई ना पहने? जैसे वो एक यंग लड़की थी तो कहती थी, मुझे इतनी प्यारी साड़ी ला दें कि जो देखे उसको बेहोश हो जाए। तो क्या फ़ायदा जब आपको देख कर लोग वो बुझते ही जाएँ बल्ब की तरह, तो कौन खुश होगा आपको देख कर? लेकिन इंसान का मिजाज है, गाड़ी यूनिक, घर यूनिक, थीम्स ये वो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं ना, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप दूसरों से हसद नहीं करते। ये एहसास आपको बड़ा करता है कि अगर उसमें कोई खूबी है तो देखें ना, मैं भी कोई किसी से कम थोड़ी हूँ। जैसे अभी बात की कि अगर किसी का जोड़ा आपको अच्छा लगा तो आप कहते हैं मेरा भी बड़ा अच्छा है, तो हसद का जज्बा कम होता है। इसी तरह एक और पॉइंट है कि आप दूसरों की तकलीद ना करें। खामखा आप दूसरों के नक्शे कदम पे चलें, पुराने डिज़ाइन पहन दे रहे, कॉपी करते रहें, डिज़ाइन ले लेके आप अपनी सोच पे रहिए, और सबसे बड़ी बात, नसीब पे राजी रहें। चलिए, अल्लाह ताला कहते हैं वन लई सलील इंसान इल्ला मासा, कि इंसान को तो वही कुछ मिलने वाला है जिसकी वो कोशिश करेगा। सूरह नजम 39 है। तो फिर क्या पता चला कि खुद का अमल ही काम आएगा। क्या किसी और का काम नहीं आएगा? आएगा, शर्त यह कि खुद भी वो काम किया हो। दूसरों की दुआएं आपको फ़ायदा देती हैं, शर्त यह कि आप खुद भी दुआ मांगें और सो ऑन। और जो काम आपने किसी को सिखा दिया, आपके तवस्सुत से कोई काम हो गया, तो फिर उसका अजर तो आपको मिलेगा। तो करना क्या है कि जो फितरी कुव्वतें अल्लाह ने आपको मुझे दी है ना, उसको इस्तेमाल कीजिए। एक दाना नहीं इंसान ले सकता अगर ज़मीन आपके उस दाने की हिफाजत ना करे, उसकी देखभाल आप ना करें, बारिश ना बरसे। तो मेरे आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, स्किल्स की सूरत में, टैलेंट की सूरत में, अमूमन वो ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हम उसको डिस्कवर नहीं करते। इस संडे का जो लेसन था उसमें टैलेंट की एक तारीफ लिखाई थी कि छुपा हुआ ख़जाना, ये फितरत का वो तोहफा है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर गूंद दिया टैलेंट और स्किल्स की सूरत में। या तो उस्ताद टैलेंट बाहर लाते हैं, या माँ बाप, या फिर हालात लेके आते हैं। खोद पड़ के अल्लाह ऐसे भटकता है कि बंदे का वो टैलेंट टैलेंट निकलता है कि दुबली पतली पतली बच्ची आयरन वुमेन बन जाती है कभी कभी हालात के थपेड़ों में। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इंसान अदल के तकाजे के मुताबिक वही पाएगा जो इसने किया, मगर अल्लाह ताला अपने फजल से जो एक्स्ट्रा दे दे। अगर आप में अल्लाह ताला के अदल के मुताबिक वो ना पाएं जो हमने कोशिश की तो ये जुल्म होगा। अल्लाह के नबी से एक रिवायत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तवस्सुत से, सही मुस्लिम 6733, कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक दिन बैठे हुए थे कि आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन पर लकीरें कर रहे थे, यानी आप लाइंस खींच रहे थे। और अमूमन इंसान ऐसा कब करता है जब किसी गहरी सोच में हो या फारिग हो और किसी का इंतज़ार कर रहा हो। खैर, आपने अपना सर उठाया फिर फरमाया तुम में कोई जान ऐसी नहीं जिसका ठिकाना मालूम ना हो गया हो, यानी अल्लाह ताला के इल्म में कि जन्नत में कौन जाएगा या जहन्नम में कौन जाएगा। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी फिर हम अमल क्यों करें, भरोसा क्यों ना कर लें, यानी जब लिखा ही जा चुका है कि हमने जन्नत में जाना है या जहन्नम में तो फिर हम अमल क्यों करें। इस पर आपने फरमाया नहीं, अमल करो, हर एक को आसान किया गया है वो जिसके लिए वो पैदा किया गया है। फिर आपने ये आयत पढ़ी फम मन आता व तका, जिसने सदका दिया और डरा। तो क्या पता चला कि अमल जो हमारे नसीब में होता है ना, अल्लाह ताला वो हमारे लिए आसान कर देते हैं। तो अभी तक जो कुछ पढ़ा ज़रा सा उसको जज्ब कीजिए, एक छोटा सा गैप लें ज़हनी तौर पे, पिछली चीज़ों में जो सीखा उसमें एक इजाफा कर लेते हैं इस वक्फे में। कुछ आयात तर्जमे के साथ जिसमें अल्लाह ताला से उम्मीद और हुस्ने ज़न की तकवीयत मिलती है, यानी कह लीजिए कि गमों दुखों तकलीफ़ों के मौके पर कुछ आयात अगर पहले से याद हों तो गम हल्के होते हैं। उन्हीं में से एक आयत कुल कह दीजिए मेरे उन बंदों को, अल्लज़ीना असरफू, मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बिलाशुबा अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो गफूर रहीम है। अल्लाह अकबर, सूरत जुमर की आखिरी आयतों में से है ये, बड़ी मारूफ आयतें हैं और सहाबा कराम कहते हैं कि इन आयतों के नाजिल होने से बहुत खुशी हुई। और अमूमन देखिए कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला वलियों को पुकारता है, नेकों को पुकारता है, या अल्लाह ताला करें इबादी अल्लज़ीना असरफू, तो गुनाहगार बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो जाए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना और ना किसी को मायूस कीजिए। आज दीन के नाम पे तबलीग में हम मायूसी भी फैलाते हैं कभी कभी, इसने नहीं जाना जन्नत में वो कैसे जा सकता है, अरे क्या सोचा आपने, इतने बुरे काम करके जन्नत में जाएंगे, और दिस एंड दैट। अल्लाह ताला ऐसी तबलीग से आपको भी और मुझे भी बचाए। इसी तरह एक और आयत है कि वो लोग जिन्होंने बुराई की या अपने ऊपर ज्यादती की वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। इसके सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे, वो अपने कहे पर इसरार नहीं करते जानते बूझते। इसी तरह जो बुराई करेगा या अपने ऊपर ज्यादती करेगा फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करेगा, वो अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाएगा। ये सब आयतें हैं, बस उनके वो हिस्से आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जिसमें माफ़ी का जिक्र है। इसी तरह एक जगह आता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बता दो कि मैं करीब हूँ, वैज़ा साल का इबादी अन्नी फ़नी करीब। आप इस लेक्चर को सुन लीजिए जो रमज़ान के लेक्चर से पहले ज़ादुल ख़ैर में एक दिन सिर्फ इस मौजू पे हुआ था कि रमज़ान और दुआ। इतनी डिफरेंट वर्ड्स के साथ हमने इसकी एनालिसिस देखी थी कि साला का क्यों है और आपका नाम बीच में क्यों और आगे पीछे, तो कुरान के लफ्ज़ों में खोइए जैसे आजकल हम आयत वायत में करते हैं। एक से डेढ़ ही आयत होती है मोस्टली, दो हो जाएँ तो हम बड़े खुश होते हैं, क्या दो हो गई, कल छोटी छोटी थी तो तीन हो गई। क्यों? कुरान के लफ्ज़ों में डूब कर इसका मानी लीजिए। हम इधर उधर की बातें, उसने ये कहा उसने कहा, नहीं, कुरान एक समंदर है, अल्लाह का कलाम है ना, इसके अंदर रहेंगे ना तो अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, इस इर्द गिर्द जाएंगे तो दूसरे इंसानों के अकवाल और अफाल रह जाते हैं। फिर इसी तरह कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ, लिहाजा वो मेरी सुने, मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत याब हो जाए। तो अल्लाह ताला की पुकार के जवाब में आपको लब्बैक कहनी पड़ेगी, फिर आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, फिर इसी तरह मैं युजीबुल मुस्तर इजादा हो, क्या वो जो मजबूर की पुकार सुनता इसकी तकलीफ दूर करता और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। 20th पारे का शुरू, सूरत नवल। वो अल्लाह है या इसके साथ कोई और भी है इला? अलाहुम्मा अल्लाह। तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो, तो जितना ज़्यादा अल्लाह ताला को पुकारेंगे, ब्राह रास्त पुकारेंगे, सांप के लाखों को हटाकर पुकारेंगे, वो उतना जल्दी सुनेगा। डायरेक्ट कॉल तो जल्दी मिल जाती है ना। इसी तरह एक जगह आता है, वो जिन्हें ये कहकर डराया गया कि लोगों ने तुम्हारे लिए फ़ौज इकट्ठा कर रखी है, इनसे डरो, इसने इनके ईमान में इजाफा ही किया। वो बोले हमें अल्लाह ही काफ़ी है। तीसरी दफ़ा कम से कम इस बुक में इसका तذکرہ आ रहा है, हमरउल असद के मौके पे, जो हिम्मतें तोड़नी चाहिए थी उस पे साहबा ने कहा था हसबुनल्लाह व नेमल वकील। लिहाजा वो अल्लाह की नेमत को लेकर लौटे, ना इन्हें कोई अजियत पहुंची और उन्होंने अल्लाह की रज़ा चाही। और अल्लाह तआला अज़ीम फजल वाला है, यानी अबू सुफियान साहब तो जा चुके थे अपनी फौजें लेकर, और कोई जंग नहीं कुछ नहीं, बल्कि वहां से माल गनीमत भी मिल गया। और इसी तरह से खूबसूरत जुमला मर्द मोमिन का, जो सूरत मोमिन में है, वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह बंदों को देखता है, तो अल्लाह ने इस बंदे को मुजरमीन के मकरो कैद से बचा लिया। ये तो वही जानेगा जिसको अल्लाह के रास्ते में आजमाया जाए। तो इन सारी आयतों के अंदर से इस बात को सुनने के बाद अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर एक, अल्लाह की रहमत से ना तो खुद मायूस होना है ना दूसरों को करना है। हुस्ने ज़न रखना है, इसके ज़रिए से मज़बूती मिलेगी। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला को पुकारना है, वो बहुत करीब है। क़ुरान की आयात से नसीहत हासिल करनी है और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला अल्लाह के सपुर्द करने हैं। ज़रा सा दिल खोल कर तो कहिए, अल्लाह सब तेरे हवाले। अच्छा, हम एक जुमला बड़ा बोलते हैं, बल्कि हमारा ख्याल है कि जब किसी से रुख्सत हो रहे हो ना, तो वहाँ अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? अल्लाह हाफिज़। बाज़ लोग तो खुदा हाफिज़ कहते हैं। लिख कर देखिए ज़रा, कहते क्या हैं आप? खुदा हाफिज़। और क्या मुतमईन है? हम कहते नहीं, इमाम ज़ामिन मान लो, नहीं पता नहीं क्या होगा। यानी किसी को अल्लाह की हिफाजत में देकर भी कोई हलेगा? दैट मीन कि ये सिर्फ एक कल्चरल जुमला है जो हम बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो शऊर बेदार कर दे कि जो चीज़ों की असल में डूब कर मिलता है। फिर इसके बाद अगली टिप लीजिए, कितनी ही मुसीबतें फ़ायदेमंद होती हैं। अब ये यहाँ कहना बोलना बड़ा आसान है, बट आपने उस वक्त बोलना है जब कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह के हुक्म से कोई मुसीबत आई हो। किसी मुसीबत में दो चार होंगे ना, फिर वहाँ कहिए अच्छा फ़ायदा भी होगा। यहाँ तो सोच के भी कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको खुद से खुद महसूस होगा कि शर में खैर होती है। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ने मक्खियाँ क्यों पैदा की, मच्छर क्यों किए, मलेरिया क्यों किया, और बल्कि एक बहुत पहले की बात है कि एक मुल्क में, दुनिया में मच्छर ख़त्म कर दिए गए, कि मच्छर से मलेरिया फैलता है और ख़त्म करते हैं। आप हैरान होंगे कि उसके बाद और इतने जरासीम पैदा हो गए कि उनको मच्छर पालने पड़े। फिर पता चला कि मच्छर इन सारे जर्म्स को खाते थे। तो जितना ज़्यादा आप इन मच्छरों को मारेंगे, आप ये नहीं लेंगे तो दूसरी, तो कहिए खुद से कि अगर ये ना मुसीबत आती तो कोई तो आनी थी, तो बेहतर है कि यही आ जाए। बस वह जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, हमें वो अच्छे नहीं लगते। बस अब बीवियों को अक्सर लगता है कि हमारे शौहर अच्छे नहीं, वैसे दोस्तों के अच्छे हैं, बहन के शौहर तो बड़े ही अच्छे हैं, और इसी तरह की बातें। और यकीनन ऐसी ही कुछ बातें मर्दों के भी जहनों में आती होंगी कि दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। और एक कौल भी मारूफ है कि मर्द को अपना बच्चा और दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, और बीवी को इससे शायद उलट लगता है। मैं तो कुछ भी नहीं कहती, अपने ऊपर ले लें। आपको मुझे अपनी ज़िंदगी में इस असूल पे कायम रहना है कि जो मिला खूब मिला, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, क्योंकि जो मिला है वो भी किसी से कम नहीं। हमारी एक साथी हैं तो वो एक कहानी सुनाती हैं कि इसी तरह की कुछ सहेलियाँ थीं, तो जब बैठती तो अपने शोहरों की बातें करती, यानी गोया के शोहरों के गुनाह माफ़ हो रहे होते उस वक्त, तो कोई ऐसे कहती कोई कुछ। अब ये जो भी बात ही है, बस इसको एक बात ही समझिएगा। अच्छा, अब क्या करें? बदल लेते हैं। अब को बदलना आसान है, पता नहीं उन्होंने कैसे बदले होंगे, कहावत ही है। और अभी एक एक दो दो दिन ना गुजरा के वापस आ गई कि हमें हमारा ही ठीक है। दूर के ढोल सुहाने, यहां से ये समझिए वाक्य खत्म कर दें दिमाग से। कभी कभी हमें अपने इर्द गिर्द की चीजें अच्छी क्यों नहीं लगती, क्योंकि करीब से देखने में ऐब और नक्स दिखते हैं, दूर की चीज चमकती है। आप चमकती तस्वीरें तो देखें कैमरों पे, और वही जूम इन और जूम आउट का फर्क है। तो फिर अपने लिए इस चीज को पल्ले से बांध दीजिए कि कई मुसीबतें फायदा देती हैं। सवाल, क्यों आती हैं मुसीबतें? क्यों अल्लाह ताला डालता है हमें इम्तिहानों में? क्यों हम मुश्किलात में आते हैं? इसको पढ़ते हैं जरा सा। विलियम जेम्स कहता है, बहुत सी आफतें गैर मुतवक्के हद तक हमारी मददगार होती हैं। जी, बहुत सारी ऐसी हैं, यानी अचानक आती हैं और फिर उसमें से खैर बहुत बड़ी निकलती है। इसी तरह दो लोगों के नाम है कि अगर दोस्तोवस्की और टॉल्स्टाई ने अलमनाक जिंदगी ना गुजारी होती तो वो अपने मारूफ और मशहूर नावल ना लिख सकते थे। यतीमी, अंधापन, अजनबियत, फ़कर उभरने और तरक्की करने और दीन और दुनिया की कामयाबी का सबब बन सकते हैं, यानी इस शख्स में ये सब कुछ था। कभी कभी अल्लाह ताला नेमतों से और बास को मसाइब में मुबतला करके आजमाता है। औलाद और माल और दौलत बदनसीबी का सबब भी हो सकते हैं, जैसा कि फरमाया कि आपको इनके अम्बाल और औलाद धोखे में ना डालें। अल्लाह ताला चाहता है कि इन चीज़ों के जरिए दुनिया की जिंदगी में ही इनको साथ दिया जाए। इब्नुल असीर ने अपनी शाहकार किताबें मसलन जामियुल असूल और अल निहायस इसी वजह से लिखी कि वो चलने फिरने से माजूर थे, यानी स्टक थे, हैंडीकैप थे, या किसी जगह बंद थे। कोई भी रीज़न होगी, लेकिन शर से खैर निकल रही है। इमाम सरखसी ने अपनी किताब अल मबसूत की 15 जिल्दें उस वक्त लिखी जब इन्हें कुएं में बंद कर दिया गया था। कुएं में बंद, अल्लाह की पनाह। हज़रत यूसुफ तो कुएं में से नबूवत की खुशखबरियां पाते हुए निकले, और ये इंसानों को इतनी प्यारी किताबें दे के निकले। इसी तरह इब्नुल कय्यम ने जादुल मात हालत सफ़र में लिखी, और जो लोग जानते हैं अरबी बुक्स को उनको पता कि जादुल मात का क्या मुकाम है अरब जख़ीरे में। सफ़र में थे हम, होते कहते नहीं, फोकस नहीं हो रहे, अब सर में दर्द है, अब जेट लॉक है, अब फिर जाना है, पैकिंग करनी है, काम नहीं छुटेगा। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग भी अपने मकसद पे फोकस कीजिए। इसी तरह कुर्तुबी ने मुस्लिम की शराह कश्ती के ऊपर लिखी, यानी कश्ती में सफ़र करते थे, और पहले दौर में लोग कई के दिन तक कश्तियों में रहते थे, तो वहाँ बैठ कर किताब लिख रहे हैं माशाल्लाह। और आप जानते हैं कि सही मुस्लिम की शराह इमाम कुर्तुबी ने भी लिखी है। इसी तरह इब्ने तैमिया रहमहुल्ला के तमाम फतावा असीरी की हालत में लिखे गए। जी, बहुत सारे लोगों को पता है कि इमाम इब्ने तैमिया एक तवील अरसा जेल में रखे गए, और वहीं से इनके खजाने निकले इल्म के। मुहद्दिसीन ने हज़ारों लाखों अहादीस इकट्ठी की, क्योंकि वो फ़कीर, गरीब और अजनबी थे। मुराद ये कि अगर बहुत दुनिया में पाँव डाले होते तो ये काम कैसे करते? ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि इस काम को करने के लिए यकसुई चाहिए होती है, फोकस्ड बंदा ही ये काम करता है। ये जो हम भागते दौड़ते थोड़ी थोड़ी दीन की खिदमत कर आते हैं ना, ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है जो अल्लाह हमसे ले लेता है। असल दीन की खिदमत ऐसे नहीं होती। आज सुबह की आयत व आयत में हमने सूरत मायदा की आयत नंबर 11 और 12 आदि की है। उसके बाद से दिल की यही कैफियत है कि अधूरी कोशिशों से पूरे नतीजे नहीं निकलेंगे। जब तक हम फोकस होकर इस काम को अपने ऊपर नहीं ले लेते, नकीब नहीं बन सकते, जिम्मेदारान नहीं बन सकते आप। बाकी दर्जे हैं, हर एक जितना हिस्सा डालता है अल्लाह उसका कबूल करता है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि आपके बाद आपका नाम रहे। और अक्सर लोग कहते हैं बड़ा काम करें, तो उसके लिए फोकस होना पड़ेगा। इस सैटरडे को इंशाल्लाह हम इस पे बात करने वाले हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सालेहीन में से एक शख्स ने इनको बताया कि इन्हें जेल में डाल दिया गया, तो उन्होंने जेल में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया और दवावईन लिखे। तौहा हुसैन भी नबीना थे, इसी हाल में उन्होंने मशहूर किताबें और डायरी लिखी। कितने ही बुलंद ओहदों वाले अपने मनसब से माजूल कर दिए गए, तो उन्होंने इल्म के मैदान में उम्मत की वो खिदमत की जो ओहदे पर रहकर नहीं कर सकते। थे जी, कभी किसी को ले ऑफ कर दिया जाए, या जॉब खत्म हो गई, या जो भी ए बी सी डी को जिम्मेदारी थी अदा न करें, तो मान लीजिए कि आपकी ज़रूरत कहीं और है, अल्लाह ने आपको कोई काम देना है और अल्लाह ताला अब आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो हमें फिर कोशिशों और ख्वाहिशों के बावजूद भी कहीं जाने या किसी खूंटे से लगने नहीं देती। इसी तरह से फ्रांस बीकन कहता है, थोड़ा सा फ़लसफ़ा इंसान को इल्हाद की तरफ माइल कर देता है, लेकिन फ़लसफे में गहराई इंसान की अक़ल को मज़हब से करीब कर देती है। जी, यानी फ़लसफ़ा अमूमन दीन से निकाल लेता है, लेकिन जितना उसके अंदर घुसेंगे उतना फिर मज़हब के करीब हो जाएंगे। मुराद ये कि सेम ही चीज़ है, इंटेंसिटी का फ़र्क है। फिर इसी तरह से ये भी चीज़ जहन में रखिएगा कि इसको इल्म वाले ही समझ पाते हैं। बिलाशुबा बंदों में इल्म वाले ही अल्लाह से डरने वाले हैं। सूरह फातिर की आयत है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म और ईमान वाले बोले, अल्लाह के कानून में तुम लोग क्यामत तक ठहरे हो। कह दो, मैं तुम्हें एक ही नसीहत करता हूँ कि तुम एक एक दो दो करके अल्लाह के आगे खड़े हो, फिर सोचो कि तुम्हारे साहेब पर जिन नहीं आते, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो तुम मनगढ़ंत बातें करते हो, तो मान लो कि उन पे कोई जिन नहीं है। डॉक्टर ए ब्रेल कहता है कि एक हकीकी मन वाले को कभी नफ्सियाती बीमारी लाहक नहीं हो सकती। जी, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना और बात है, और साइकोलॉजिकली बीमार होना और बात है। सच्चा ईमान आपको नफ्सियाती धचकों के मौके पे संभाल लेता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो ईमान लाए और अमल सालेह करे, रहमान इनके लिए मोहब्बत रख देगा। सूरत मरियम की बिल्कुल आखिर में आयत 96 है कि रहमान उनके लिए दिलों में वुद पैदा कर देगा। और हकीकत है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है ना, फिर जिब्राइल, फिर आसमानों के वाले और फिर ज़मीन वालों के लिए उस शख्स के लिए मोहब्बत डाल दी जाती है। मोमिन से मोहब्बत की जाती है और वो भी मोहब्बत करता है। उखड़ा उखड़ा रहना, अलग अलग रहना, ये ईमान वाले के लिए नहीं है। फिर इसी तरह से जो मर्द और औरत ईमान के साथ अमल सालेह करेंगे, हम इन्हें खुशगवार ज़िंदगी गुजरवाएंगे। जी, सूरत नहल की आयत 97 है, फलनुह्यिन्नहु हयातन तय्यिबा। असल पाकीज़ा ज़िंदगी वो है। और इसी तरह से बिलाशुबा अल्लाह ताला ईमान वालों को सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई देता है। तो क्या सीखा आपने? मैंने अभी जो पढ़ा है उसका खुलासा कर लेते हैं कि जो हम पे मुसीबतें आती हैं उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। मसा आजमाइश अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों का इम्तिहान होती है। इसमें एक वार्निंग भी होती है, तंबीह, क्या कि गुनाह और नाफरमानियों से बचो और ये मुसीबतें बचाव बन जाती हैं। इसी तरह अल्लाह का अज़ाब किन पे उतरता है? मुजरिमों पे उतरता है, यानी क्रिमिनल्स पे, आम लोगों पे नहीं। फिर इसी तरह से तिर्मिज़ी की रिवायत 2396 देखी, हज़रत अनस से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है, तो इसे दुनिया में ही जल्द सजा देता है, और जब अपने किसी बंदे के साथ शर का इरादा करता है, तो इसके गुनाहों की सज़ा को रोके रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन इसे पूरी पूरी सज़ा देता है। इससे क्या पता चलता है कि मोमिन को उसके गुनाहों के बदले में दुनिया में तकलीफ़ें आ जाती हैं, जबकि काफिर को आखिरत में सजा मिलेगी। फिर इसी तरह बुखारी की रिवायत 5641 अबू सईद खुदरी से रिवायत है, और साथ ही साथ अबू हुरैरा का भी नाम है, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ़ और गम में मुबतला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर इसे कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला इसे इसके गुनाहों का कफारा बनाते हैं। क्या करें फिर? ये बात मानिए कि मुसीबतें खैर और बरकत का बायस बनती हैं। सवाल पैदा होता है, कैसे, किसके लिए मुसीबत खैर बनती है? नंबर एक, जो सब्र करे, जो सवाब की उम्मीद रख कर सब्र करे, अल्लाह के फैसलों पर रजामंदी हो, और ऐसा शख्स जो अपना मुहासबा करे, तौबा इस्तगफार करे, मौजूदा नेमतों की कदर करे, तो ऐसे शख्स के लिए तकलीफें खैर का जरिया बनती हैं। जब आप किसी तकलीफ के बाद अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करें, तो मान लीजिए कि वो आपकी आजमाइश थी और आप उसमें पूरे उतरे हैं। इसके बरक्स अगर उस तकलीफ का नाम लेकर अल्लाह से और भी दूर हो गए, जिसको दूसरे लफ्जों में डिप्रेस कह लीजिए, कई लोग नमाजें छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए कि ये आपके गुनाहों की सजा थी। बच्चे को माँ मारती है तो बच्चा माँ ही की गोद में चुपता है। इसी को कहते हैं ना कि माँ मारे बच्चा मामा पुकारे। तो अल्लाह का कुर्ब लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर बीच में एक दो सवाल अगर मैं कोई भूल जाऊँ तो आप लिख भी दीजिए दरी रिमाइज के लिए। ये था कि नक्काली करने या दूसरों का लुबादा ओढ़ने और जो आज टिप पड़ी उसमें फ़र्क क्या है। सीधी सी बात समझ लीजिए, अल्लाह ने जो आपको दिया है ना स्किल्स और टैलेंट की सूरत में, उसका दी बेस्ट दुनिया को दे जाए बस। जो आप हैं ही नहीं उसके बारे में अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा। हम सारी ज़िंदगी उन चीज़ों के लिए कुड़ते रहते हैं जो हमें नहीं मिली होती स्किल्स की सूरत में, और जो मिला होता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं। और जितना ज़्यादा आप दुनिया में रहने के दौरान ये सारी चीज़ें देखेंगे ना कि वही खुश है जो अल्लाह के दिए से खुश है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सुकून देगा।